यथा वार्तादयो यर्था योग स्यार्थम न बिभ्रति अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्तमेष्टम तथा सतः। अब बता रहे हैं कि गृहस्थ के अंदर कोई रहा और गृहस्थ के अंदर रह करके और फिर उसके मन में आई संन्यास की अथवा वानप्रस्थ की, तो उसके लिए कहते हैं कि अपने मन में पहले अच्छी तरह से वैराग्य को धारण कर लेना चाहिए। पवित्र देश में जावे, सुख शांति से रहे, प्राण अपान का समान निरोध करके पूरक कुंभक रेचक के द्वारा अपने मन को शुद्ध करे, फिर कामनाओं का त्याग करे। ऐसा अभ्यास करने से उसके मन से कामनाएं समाप्त हो जाती है, चित्त अवरुद्ध हो जाता है। परंतु भाई कोई व्यक्ति ऐसे हो कि वो वानप्रस्थ और सन्यासी की तरफ चले गए और फिर वापस वो गृहस्थ में आते हैं तो वो तो उल्टी खाने के समान है। या तो उनको इधर जाना ही नहीं चाहिए था, गए हैं तो फिर निकल गए, सो निकल ही गए। वानप्रस्थी और सन्यासी होकर वापस गृहस्थ के भोग में जाता है, वो आश्रमापसद है, अपने आश्रम का खनन करने वाला है, अपने आश्रम का वो कलंक है। गृहस्थ होकर के क्रिया का त्याग कर दे और ब्रह्मचारी होकर व्रत का त्याग कर दे, तपस्वी होकर के फिर गांवों के अंदर रहने लग जाए और सन्यासी होकर के इंद्रियों के पीछे पड़ जाए, माने इंद्रियों का गुलाम बन जाए, ये सब अपने अपने आश्रम में कलंक की बात है। और अपना जो स्वरूप है उस स्वरूप को परमात्मा का स्वरूप समझना चाहिए, ज्ञान के द्वारा अंतःकरण को निर्मल करना चाहिए। अब बताओ जब व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित है तो किम इच्छन कस्यवा हेतोर देहम पुष्णाति लंपट है, वो किसकी इच्छा करेगा। अरे स्वरूप ऐसा है, परिपूर्ण है, स्वरूप में कोई अभाव नहीं है, इसलिए इच्छा का प्रश्न नहीं है। और साथ ही साथ वह भोग करता नहीं है तो वो भोगता भी नहीं, और उसके इच्छा नहीं तो उसके लिए इच्छित भी नहीं, तो किसका तो वो पोषण करेगा और किसके लिए चाहेगा और क्या वो चाहेगा, बहुत आनंद में रहेगा। युधिष्ठिर, इस शरीर को रथ कहा गया है, इंद्रियों को घोड़ा कहा गया है, मन को लगाम कहा गया है, बुद्धि को सारथी कहा गया है और जीव को रथी कहा गया है। परमात्मा है वो हमारे लक्ष्य है। धनुष बाण लेकर जैसे जैसे निशाना लगाया जाता है, ऐसे धनुरितस्य प्रणवम पठंती, और धनुष है वो हमारे लिए ओंकार है। परमात्मा जीव का लक्ष्य है, उस परमात्मा को प्राप्त करना ये जीव का मुख्य काम है। चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम से करें, चाहे गृहस्थ से करें, चाहे वानप्रस्थ से करें, चाहे संन्यास से करें, किसी भी उपाय से करें। ज्ञान रूपी तलवार लेकर के अपने शत्रुओं को जब तक नष्ट नहीं करेंगे तब तक इसको शांति नहीं मिलेगी। नोचेत प्रमत्तम असदिंद्रियवाजी सूता, यदि हमने इंद्रियों पर लगाम से इंद्रियों के ऊपर निग्रह नहीं किया तो भाई ये इंद्रियां भी घोड़े भी चल रहे हो, रथ में हम बैठे हो, उबड़ खाबड़ मार्ग आया हो और घोड़े वहां पर लड़खड़ा रहे हो, रथ हमारा हिलता हो तो वहां पर वो रथ गुड़ जाएगा, घोड़े भी गुड़ जाएंगे, तो रथी सारथी सब वहां पर गुड़गड़ा के खत्म हो जाएंगे। इसी प्रकार से ये विषय है, ये तो मार्ग है और घोड़े हैं, इंद्रियां हैं, मन लगाम है, इनको तो नियंत्रित करते हुए चलना चाहिए, यूं सीधे ही खुला नहीं छोड़ देना चाहिए। इससे उरु मृत्यु भय क्षिपंती, महान मृत्यु के अंदर हम लोग गिर सकते हैं, तो सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात यह है, दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक प्रवृत्ति मूलक कर्म होते हैं, एक निवृत्ति मूलक कर्म होते हैं। आवर्ते प्रवृत्ति न, प्रवृत्ति मूलक कर्मों से संसार में आना जाना होता है और निवृत्ति मूलक कर्म से अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष हो जाता है। माने जिन वृत्तियों से हम संसार में जाते हैं वो प्रवृत्ति मूलक कर्म, और जिन वृत्तियों से हम संसार से ऊपर उठते हैं वे निवृत्ति मूलक कर्म है। ये यज्ञ वगैरह है, कामना रख करके किए जाते हैं, प्रवृत्ति मूलक कर्म है। यज्ञ किया जाएगा, धुआं होगा तो यजमान का भी शरीर है उस धुएं के साथ ऊपर रात्रि की देवताओं के पास जाएगा, फिर कृष्ण पक्ष के देवताओं के पास जाएगा, फिर दक्षिणायन में जाएगा, फिर चंद्रमा में जाएगा, और फिर वहां जाकर के और चंद्रलोक से फिर वापस नीचे औषधियों में, वृक्षों में, लताओं में, इनमें आएगा, फिर किसी न किसी का खाद्य बनेगा, फिर किसी के पुरुष शरीर में जाएगा, फिर स्त्री शरीर में जाएगा, और फिर ये जन्म लेगा, फिर कर्म करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। ऐसे ऊपर नीचे आने जाने का इसका क्रम बना ही रहेगा अपने कर्मों के कारण से। और जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करने वाले हैं, जिन्होंने अपने वृत्तियों को संसार से ऊपर उठा लिया है, वे मरने के बाद अग्नि लोक में जाते हैं, सूर्य के अभिमानी देवता अपने पास में रखते हैं, शुक्ल अभिमानियों शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवताओं के पास में वो रहता है और वहां ऊपर जाकर के जितने मैल हैं वो सूर्य लोक में अग्नि लोक में नष्ट हो जाते हैं। तो उसकी जो स्थूल उपाधि है, स्थूल उपाधि वाला जीव वैश्व कहलाता है, सूक्ष्म उपाधि वाला तेजस कहलाता है, कारण उपाधि वाला जीव है वो प्राज्ञ कहलाता है और सब प्रकार से उपाधियों से रहित निरुपाधिक चैतन्य वो तूर्य कहलाता है। तो वहां अग्नि लोक में उसका वैश्व तेजस और प्राज्ञ तीनों ही रूप समाप्त होकर तुरीय स्थिति में वो आ जाता है। इसको देवयान बोलते हैं। आत्मस्थ न निवर्तते, फिर अपने स्वरूप के अंदर स्थित हो जाता है, फिर वापस निवृत्त होकर के नहीं आता है। शास्त्र के अंदर दो प्रकार के मार्ग हैं, एक से तो आना जाना होता है, एक से आना जाना नहीं होता। मनुष्य को चाहिए कि इन दोनों के अंदर जो मार्ग श्रेष्ठ हो उसे अपना लेना चाहिए। यदि हमसे पूछा जाए तो हे युधिष्ठिर, हम तो यही कहेंगे कि जिस मार्ग से आवागमन बंद होता है वही मार्ग श्रेष्ठ है। उसके बंद होने के लिए हम तुमको बड़ा दिव्य ज्ञान बताते हैं। देखो ध्यान से सुने, ये सातवां स्कंद अब समाप्ति पर ही है। बड़ा विचित्र इसके सुनने का बड़ा भारी महात्म है। कैसी हमारी वर्ण व्यवस्था, कैसी हमारी आश्रम व्यवस्था, कैसे कैसे इनमें ज्ञान की बातें हैं, ये भागवत के अंदर आज भी मौजूद है। तो भागवत हमको अमृत पिलाता है, अमृत देता है। तो ये अमृत ऐसा है कि जीवन पर्यंत नहीं, आगे के जीवन में भी काम आने वाला है। आदौ वन्ति जनानाम सद बहिरंत परावरम, आदि में ये सृष्टि हुई उससे पहले भी वही है और सृष्टि के बाद भी वही है, सृष्टि के अंदर भी वही परमात्मा है, बाहर भी वही है, छोटे से छोटे में, बड़े से बड़े में वही है, ज्ञान रूप से भी वही है, ज्ञेय रूप से भी वही है, वाणी रूप से भी वही है और वक्तव्य रूप से भी वही है, अंधकार में भी वही है और प्रकाश में भी वही है। इस प्रकार से वही एक तत्व है, उसके अलावा अलग कोई है ही नहीं। लेकिन हमको जो प्रतीति हो रही है संसार की परमात्मा से अलग और परमात्मा की प्रतीति नहीं हो रही है, वो क्या बात है? वो जैसे कांच के अंदर हम अपना मुख देखते हैं और कांच के अंदर दिखाई देने वाले मुख को देखकर हम सुखी और दुखी होते हैं, वास्तव में वो कांच के अंदर है नहीं। इसी प्रकार से परमात्मा में दिखाई देने वाला जगत है, ये अपना रूप है नहीं, लेकिन इसको देख देख करके हम सुखी और दुखी हो जाते हैं। विचार करो कि वास्तव में जैसे कांच में हमारा शरीर नहीं है, इसी प्रकार से पृथ्वी भी नहीं है, पृथ्वी का कारण जल भी नहीं है, जल का कारण अग्नि भी नहीं है, अग्नि का कारण वायु भी नहीं है, वायु का कारण आकाश भी नहीं है। न ये शरीर पांच भूतों से बना हुआ है और न पांच भूतों से अलग है, ये बिल्कुल ही अलग, ये चीज अलग है, आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है। इसको तीन प्रकार के अद्वैतों से हम जान सकते हैं, एक भावाद्वैत, एक क्रियाद्वैत और एक द्रव्याद्वैत। भावाद्वैत क्या है कि कार्य और कारण में एक ही एक कारण ही कारण है, कार्य है ही नहीं, इसको जानना भावाद्वैत है। कपड़े को देखा तो उसमें केवल तंतु ही तंतु है, कपड़ा नाम तो हमने व्यवहार के लिए रख दिया, केवल उसमें तंतु ही तंतु है, सूत ही सूत है, ऐसे केवल सूत के ऊपर दृष्टि है, वो है भावाद्वैत। सोने का आभूषण लिया तो उसमें उसकी आकृति भी दिखती है, उसका नाम भी है कि भाई ये कंठा है। अब कंठा है उसका कैसी बनावट है ये देखते हैं, लेकिन और ज्यादा गहरे परीक्षक होते हैं, वो सोने को ही देखते हैं, देखते हैं भाई भजन है कि नहीं, कहीं पीतल तो नहीं है, वो सोने पर दृष्टि रखते हैं, वो नाम और रूप पर दृष्टि नहीं रखते। ऐसे ही इस जगत के अंदर जो प्रतीत होता है उसके मूल में परमात्मा है, उस परमात्मा पर दृष्टि रखना ये भावाद्वैत है। क्रियाद्वैत क्या है कि शरीर से मन से वाणी से जो कर्म कर दिए जाए वो सब के सब परमात्मा के अर्पण करना है, ये क्रियाद्वैत है। और द्रव्याद्वैत क्या है कि जैसे हमारा शरीर, हमारी स्त्री, हमारे पुत्र, ये हमारे कहलाते हैं और हमें प्रिय लगते हैं, और जैसे हमारे शरीर को कोई आराम देता है तो हमें अच्छा लगता है, ऐसे ही दूसरे के लिए भी हम वस्तु देते हैं, अपने घर कुटुंबियों को वस्त्र देवे, कपड़ा देवे, भोजन देवे, दूसरों को देवे, उनको भी वैसा ही सुख मिलेगा। इस प्रकार से जिस द्रव्य से हमें संतुष्टि होती है, ऐसे ही द्रव्य से दूसरों को संतुष्टि होती है, ऐसे द्रव्य के ऊपर सबका, सब द्रव्य है वो सबका भोग्य है, ऐसा विचार करना स्वार्थ कामयो रैक्यम, उसमें द्रव्य में सबकी एकता कर देना, इसका नाम द्रव्याद्वैत है। यह मैंने आपको संक्षेप में सार की बात कही है। हे युधिष्ठिर, बड़े भाग्यशाली हो आप कि आप अपने ही घर के अंदर रहते हुए गृहस्थ में रहते हुए भगवान की आप सेवा करते हो। आप ध्यान से सुने, नारद जी कहते हैं कि मैं अपनी बात आपको बता दूं। अब बताओ, नारद जी महाराज को पहले स्कंद में अपना जीवन ये भी बता देना चाहिए था जो पहले वहां बताया है। दासी पुत्र का जो जीवन था वो पहले स्कंद में बताया, लेकिन अब जो अपना जीवन बता रहे हैं वो और पहले का बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि मैं दासी पुत्र क्यों बना था, तो वही बता देते कि मैं दासी पुत्र क्यों बना था, पर वहां नहीं बता कि यहां बताए। क्यों बताए यहां कि ये सातवां स्कंद है, जीव का निर्माण किन किन जन्मों के किन किन वासनाओं से होता है ये बात बतानी है। और यहां परम वक्ता नारद जी महाराज हैं, तो नारद जी बताते हैं कि मेरा भी जीवन देखो भाई, गृहस्थ का धर्म पूछा है तो गृहस्थ को सबसे ज्यादा महत्व सत्संग को देना चाहिए। मैंने जीवन में सत्संग को महत्व दिया तो जाकर के वेद व्यास का भी गुरु बन गया, उसको भी जाकर मैंने पाठ पढ़ा दिया। ये सत्संग से महत्व देने की बात थी जो मैंने पहले स्कंद में बता दी। और जीवन में सत्संग नहीं किया तो मेरे जीवन में जाकर कितना दुष्प्रभाव पड़ा वो भी अब बता रहे हैं। बता रहे हैं कि पहले मैं उपबर्ण नाम का एक गंधर्व था और सारे गंधर्वों में मैं श्रेष्ठ था, बड़ा सुंदर था, मेरा रूप रंग बहुत सुंदर और बहुत सी स्त्रियां मेरे पर मुग्ध हुई हुई और मैं उन स्त्रियों के साथ में रहता था। स्त्री नाम प्रियतम है, नित्यम मत्तस्तु पुरुलंपट है, सदाई मदोन्मत्त रहता और बहुत मैं लंपट था। उन सब स्त्रियों के साथ में खेलता कूदता, एक बार मैं देवताओं के वहां पर चला गया, गंधर्वों के वहां पर चला गया। बात क्या हुई, न जाने कोई उन देवताओं पर कोई भगवान की कृपा हुई। ध्यान से सुनने भाई, थोड़ी बहुत नींद की झोंकी आ भी गई है तो अब थोड़े से सावधान हो जाओ, बहुत अच्छी बात आ रही है। कहते हैं वो देवताओं का वहां यज्ञ ज्ञान सत्र चल रहा था, उस ज्ञान सत्र में मैं चला गया और वहां बेचारे ब्रह्म की चर्चा कर रहे थे, जगत की चर्चा कर रहे थे, जीव की चर्चा कर रहे थे, आपस में वो सत्संग की बातें कर रहे थे। मैं स्त्रियों के बीच में वहां गया, वहां पर नाचने लग गया, गाने लग गया, गायन तद विद्वान स्त्री भी परिवृत हो गत है, और मैं उन स्त्रियों से आवृत होकर के तरह तरह से हंसी मजाक करने लगा। ऐसे समय में मुझे श्राप दिया कि ए उपबर्ण गंधर्व, क्या कर रहे हो, सत्संग का घोर अपमान कर रहे हो, यहां भगवान की चर्चा चल रही है, ज्ञान की चर्चा चल रही है और तुम अपने इन स्त्रियों को लेकर यहां नाच गा रहे हो, तुम यहां पर भोग विलासता की बात कर रहे हो, तुम यहां सत्संग के अंदर आने लायक नहीं थे, चले जाओ, हम तुमको श्राप देते हैं कि तुम पृथ्वी के अंदर एक शूद्र कुल में जन्म लोगे। उसका फल ये हुआ कि मुझे शूद्र कुल के अंदर जन्म लेना पड़ा। शूद्र कुल में मैं आया, मैंने भगवान से प्रार्थना की, महाराज हो गया सो हो गया, आपकी चर्चाओं का मैंने बहुत अपमान किया, जहां आपकी चर्चा चलती है वहां हमको बहुत शालीन ढंग से सुनना चाहिए, हम उसको समझ नहीं पाए थे, अब आप कृपा करो, हम आपके विषय में सुनना ही चाहते हैं। तब मेरे उसी गांव में संतों ने चातुर्मास किया और मुझे सत्संग मिल गया। सत्संग मिल गया तो मुझे भगवान की कथा भी सुनने को मिल गई। उसका फल ये हुआ कि मैंने वेद व्यास जी को कहा कि आप भगवान की कथाओं को लिखो। तो भाई, गृहस्थी आदमी का ये सबसे बड़ा कर्तव्य है कि धर्म की उसको सत्संग करना चाहिए, संसार के विषय में सोच करके चलना चाहिए, परमात्मा के विषय में सोचना चाहिए, उसके लिए समय निकालना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्रह्मचारी वानप्रस्थी और सन्यासी बिल्कुल न देखें, ये अर्थ नहीं है, परंतु घर गृहस्थ वाले इसी काम में लगे रहते हैं, उनको समय निकालना अच्छा लगता ही नहीं है, अतः उनके लिए विधान है वानप्रस्थी, तो इसके अलावा करेंगे भी क्या, उनका उपदेश दे ही दिया। वानप्रस्थियों को भी उपदेश दिया कि भगवान का चिंतन करो और सन्यासियों को भी उपदेश दे दिया कि भगवत प्राप्ति के कारण से ही सन्यास आश्रम श्रेष्ठ है, परंतु गृहस्थ के लिए प्रवृत्तियां बहुत हैं, इसलिए वे समय निकालने में संकोच करते हैं। नारद जी कहते हैं कोई संकोच नहीं करना चाहिए भाई, सत्संग के लिए समय निकालो, अध्यात्म के लिए समय निकालो, समय पवित्र हो जाएगा और तुम स्वयं पवित्र हो जाओगे। तो गृहस्थो ये न पदवी, मैंने हे युधिष्ठिर इतना अच्छा सरलता से सुगमता से ये तुमको बताया है गृहस्थ धर्म, कि इसको सुनता है तो उसका पाप नष्ट हो जाता है और उसका गृहस्थ भी फलता फूलता रहता है, निश्चिंत रहता है और उसकी भगवान में भक्ति बढ़ती है। हे युधिष्ठिर, बड़े भाग्यशाली हो आप, ब्रह्मा आदि जिनके पीछे पड़े रहते हैं फिर भी जिनके दर्शन होना बड़ा मुश्किल है, वही श्री कृष्ण तुम्हारा ममेरा भाई होकर तुम्हारे पास में रह रहा है, तुम बहुत भाग्यशाली हो, ऐसे भगवान की आराधना करो। देवर्षि नारद की बात सुनकर के युधिष्ठिर जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने उनको प्रणाम किया। फिर देवर्षि नारद वहां से ब्रह्मलोक की तरफ चले गए। भगवान श्री कृष्ण भी बड़े प्रेम से विवल हुए आज कि ओहो, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि नारद जी ने हमारे युधिष्ठिर जी को बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। इस प्रकार से ये दाक्षायणियों का वंश जो है छठे स्कंद से जो चला था उसको मैंने कह दिया है, अब आठवां स्कंद प्रारंभ होता है। अब देखो, अनेक जन्मों की वासनाओं से जिस जीव का ये शरीर बनता है, अब वहां यदि अपने वासनाओं का त्याग नहीं करेगा तो कितने लंबे समय तक उसको भटकना पड़ेगा, ये बात बताने के लिए आठवां स्कंद है। इसको मन्वंतर स्कंद कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु राज्य कर लेते हैं। एक एक मनु को 71 चतुर्युगी मिलती है। 71 बार उनके सामने सतयुग आता है, 71 बार त्रेता आता है, 71 बार द्वापर आता है, 71 बार कलयुग आता है, तब एक मनु का राज्य पूरा होता है। तो कितने कितने युगों तक इस जीव को भटकना पड़ता है पता नहीं है, फिर भी भगवान इन सारे मनवंतरों के अंदर अवतार लेते हैं। जैसे कोई बड़ी भयंकर कहीं आग लग जाए, लेकिन बहादुर पुरुष वहां भी जाते हैं और आग के अंदर जो घिरे हुए हैं उनको हर तरह से बचाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से हर मनु के यहाँ भगवान अवतार लेते हैं और लोगों की रक्षा करते हैं। कहीं पर वे किस प्रकार से रक्षा करते हैं, कहीं किस प्रकार से रक्षा करते हैं, ये सब बातें आठवें स्कंद की कथाओं से हम लोग जान लेंगे। राजा परीक्षित पूछते हैं कि महाराज, स्वयंभू मनु का तो हमने विस्तार से वर्णन सुना है, लेकिन और भी तो मनु है। आपने कहा था कि एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु हो जाते हैं, तो बताओ उन 14 मनुओं में भगवान के कितने अवतार हो गए, कितने तो मनु हो गए और कितने होने वाले हैं, और वर्तमान में कौन से मनु का शासन चल रहा है, जरा इसके विषय में आप हमको बताइए। पर याद रखेंगे आप, हमें मनुओं के विषय में नहीं पूछना है, उन मनुओं के अवतारों में जो भगवान अवतार लेके काम किए ना, उसके विषय में पूछना है हमको। कृतवान जो जो कार्य किए हैं और कुरुते जो कर रहे हैं और करता और आगे करेंगे, ये सब हमको बताओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो, 6 मनु बीत चुके हैं। पहले ही पहला स्वयंभू मनु तो मैंने तुमको बता ही दिया कि जिसके 2 लड़का और 3 लड़कियां हुई थी। स्वयंभू मनु में हमने ये भी बताया था कि आकुति को रुचि नाम के प्रजापति के साथ दे दिया, तो उस और वहां भगवान ने यज्ञ रूप से अवतार लिया था। तो इधर क्या हुआ कि मनु और शत्रुपा तपस्या करने के लिए सुनंदा नदी के किनारे गए, गंगा नदी के किनारे गए। वहां जाकर के वे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि महाराज, आपके प्रकाश से ही संसार प्रकाशित है, आपके जगने पर ये जगता है और आपके सोने पर ये आपके अंदर लीन रहता है। यो जागृति शयानेस्मिन नायम तम वेद वेद से वेद से, और जब तक आप इसको चेतना नहीं देते हो तब तक इसको कोई ज्ञान नहीं होता है। आपके द्वारा सारा संसार व्याप्त है, सारे संसार में आप ही हैं, इसलिए कोई कभी किसी प्रकार का अधर्म न करे, किसी का कोई हिस्सा न लेवे। आप विश्व का है, पुराण पुरुषोत्तम है, और आप अपनी चेष्टाओं को कभी भी व्यर्थ नहीं होने देते हैं, ऐसे आप पवित्र हैं। वो बेचारे यूं भगवान की स्तुति कर रहे थे। इतने में ही राक्षस लोग आए और राक्षस आकर के मनु और शत्रुपा को खाने लगे। भगवान अपने यामों के साथ, देवताओं के साथ आए और उन राक्षसों का संहार किए थे। दूसरे जो मनु हुए अग्नि के बेटा थे, उनका नाम था स्वारोचिस मनु। कहते हैं एक बात बता दें कि जितने मनवंतर में मनु होते हैं उनमें मनु, मनुपुत्र और ऋषि, देवता इंद्र और भगवान का अवतार ये हुआ करते हैं। तो मनु थे स्वारोचिस और उसके द्युमुत सेन आदि थे मनुपुत्र, रोचन वहां इंद्र था, तुषित आदि देवता थे, और सप्तर्षि माने ऊर्ज स्तंभ इत्यादि थे सप्तर्षि। वहां भगवान ने वेद शिरा के यहाँ तुषिता के गर्भ से विभू रूप से अवतार लिया और 88,000 ऋषियों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी, कुमार व्रत की शिक्षा दी और उनका कल्याण किया। तीसरे उत्तम नाम के मनु हुए, यहां भगवान ने सत्यसेन रूप से अवतार लिया। अवतार लेकर के और जो यक्ष राक्षस झूठ बोलते थे और व्रतों का नाश करने वाले थे, दुष्टिल थे, असत थे, दुराचारी थे, उनका उन्होंने संहार किया। चौथे तामस नाम के मनु हुए, यहां भगवान ने हरि रूप से अवतार लिया और एक जलाशय के अंदर, सरोवर के अंदर ग्रह के फंदे में फंसे हुए एक हाथी का उन्होंने उद्धार किया। राजा ने कहा, महाराज ठहरिए ठहरिए, बड़ी सहायता मिलती है जब हम गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनते हैं तो हमारे दिल में विचार आता है कि अरे भगवान एक हाथी का उद्धार कर सकते हैं तो फिर हमारे उद्धार में तो भगवान कैसे लगे हुए, बड़ी प्रेरणा मिलती है। इसलिए महाराज गजेंद्र की तो आप कथा सुनाओ ही सुनाओ। तत्कथा सुमहत पुण्यम, देखो कभी कभी तो कथा की महिमा वक्ता बोलते हैं और कभी कभी कथा की महिमा श्रोता करते हैं। परीक्षित जी कहते हैं कि महाराज तत्कथा सुमहत पुण्यम, गजेंद्र की मुक्ति की जो कथा है बहुत पुण्य देने वाली है, बहुत यश देने वाली है, बहुत कल्याण करने वाली है, क्योंकि भगवान की महिमा जो इसमें है, अतः इस कथा को बड़े विस्तार के साथ बड़े प्रेम से सुनाइए। सूत जी कह रहे हैं कि जब परीक्षित जी ने ये बात कही और भगवान की कथा में उसको चस्का तो लग ही गया था, अतः जब गजेंद्र के कथा के लिए उसने पूछा तो सारे ऋषि मुनियों के बीच में बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए परीक्षित जी महाराज आगे कह रहे हैं। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि देखो परीक्षित, त्रिकूट नाम का एक पर्वत है, चारों तरफ से वो क्षीर सागर से घिरा हुआ है, 10,000 योजन ऊंचे उसके शिखर है, उन शिखरों से दूर दूर तक प्रकाश फैल रहा है और त्रिकूट पर्वत के तलहटियों में क्षीर सागर की लहरें आ रही है, उस त्रिकूट पर्वत की कंदराओं में सिद्ध चारण गंधर्व बराबर जाते रहते हैं, वहां पर बहुत अच्छे अच्छे बाग बगीचे हैं जिनमें उत्तम उत्तम वृक्ष है, आम वृक्ष है, प्रियाल वृक्ष है, पनस वृक्ष है, इन वृक्षों के बड़े दिव्य फल फूल लगे रहते हैं, हर ऋतु में होते रहते हैं, वहां पर कपित है, वहां पर बिल्व है, इनकी बहुत अच्छी अच्छी छाया भी है, पक्षियों की बड़ी पवित्र ध्वनियां सुनाई देती है, मछली कच्छप ये सब उस जलाशय में है, एक बड़ा सुंदर जलाशय, उसके अंदर बड़े अच्छे अच्छे ये पशु है और पक्षी भी है, जलचर है और उनके पास में कई उड़ने वाले पक्षी भी कुहू कुहू करते रहते हैं। एक बार की बात है कि बहुत से हाथियों को और हथनियों को लिया हुआ एक गजराज उसी त्रिकूट पर्वत के और तलहटी में विचरण कर रहा था, तो विचरण करते 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 बहुत सूर्य तपने लग गया तो उसको प्यास लग गया, सब प्यास से आकुल व्याकुल हो गए। वो कोई सामान्य हाथी नहीं था, उसके सुगंध को कोई सिंह सूंग लेता तो उतने में वो सिंह भाग जाया करते थे, सिंह भी डरा करते थे, ऐसा वो बलवान हाथी था, और जिसके ऊपर वो कृपा करता वो हिरण वगैरह उसके सामने यूं ही खेलते रहते थे। तो वो एक बार अपने हाथियों के साथ, अतनियों के साथ, सबके साथ घूमता घूमता जब बहुत प्यास से आकुल व्याकुल हो गया तो एक उसने बड़ा सुंदर वही तालाब देखा, तालाब का जल बड़ा ठंडा, कमल उसमें खिले हुए हैं। अब वो तालाब के अंदर अपना एक पैर रखा, बड़ा ठंडा लगा, फिर दूसरा पैर रखा, फिर थोड़ा और आगे गया, ऐसे आगे गया तो फिर आगे जाकर के उस तालाब के अंदर उसने डुबकी लगाई और डुबकी लगाने से उसकी सारी गर्मी दूर हो गई, उसने भरपेट जल पिया और अपनी सूंड से जल लाला करके अपने साथ में छोटे छोटे बच्चे थे और भी हाथी थे और अथनियां थी उन सबको वो पिलाने लगा, जो जल पिलाने लगा तो जल पिलाते 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 बड़ा मस्त हो गया। पपौ निकामम निज पुष्करो धृतम आत्मान मद्भी स्नपयन गतक क्लमह, इससे उसकी सारी थकावट दूर हो गई, स्वयं ने भी जल पिया और परिवार वालों को जल पिलाया, बड़ा उसको आनंद मिल रहा था, सुख मिल रहा था। जिस प्रकार से घर गृहस्थ में फंसा हुआ व्यक्ति मृत्यु को भूल जाता है, इसी प्रकार से वो भूल गया कि मेरे पर कोई संकट आने वाला है, जल पिलावे और हंसे खेले, इस प्रकार से वो सरोवर में था। इतने में ही एक ग्रह आया, कोई उसका भाग्य था कि वो ग्रह आकर के, मगरमच्छ आकर के, बड़ा बलवान वो ग्रह था, आकर के उसने उसका पैर पकड़ लिया और वो भी रुषा बड़े क्रोध से आकर उसने पकड़ लिया। अब जब वो आया तो वो हाथी भी कम नहीं था, हाथी भी बड़ा बलवान, उस ग्राह से पिंड छुड़ाने के लिए वो अपना पैर वहां से हटाया। तो तथा तुरम यूथ पतिम करेण वह आपस में खूब बल लगाने लगे। अब हाथी तो बल लगाता है उसको बाहर लाने के लिए, अपना पिंड छुड़ाने के लिए, मगरमच्छ बल लगाता है उसको पानी के अंदर ले जाने के लिए। इस प्रकार से जहां तक उसका बल था उसने अपना बल पूरा लगाया, और साथ ही साथ जब उसका बल क्षीण होने लगा तब उसने हाथियों की तरफ देखा, हाथियों की तरफ देखा, वो चिल्लाने लगे, अरे बचाओ भाई, कोई बचाओ, कोई बचाओ, अब कैसे उसको बचावे। अब वो कभी कभी तो खींच के उसको बाहर ले आवे और कभी मगरमच्छ उसको अंदर ले जावे। ऐसे अंदर लाने में और बाहर लाने में बहुत सा समय निकल गया। नियुद्यतोर एवं इभेन्द्र नक्रे और विकर्षतोर अंतर तो बहिर्मित है, अंदर और बाहर ले जाने में उनको 1000 वर्ष बीत गया। इस 1000 वर्ष के अंदर बेचारे हाथी को शक्ति लगाते 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 अब बड़ी कमजोरी आ गई। अब हाथी को बचाने वाला कोई नहीं था तो बड़े भारी संकट में पड़ गया। अब हाथी को वो घसीट के ले जा रहा, हाथी एकदम हताश हो गया, अपने पैर उसने ऊपर कर दिए और वो अब डूबने ही वाला है। उसके गले तक पानी आ गया, मुंह तक पानी आ गया, सूंड ऊपर कर दी, सूंड थोड़ी सी बाकी है। उस समय में उसने ध्यान किया कि हे जगन्नाथ, हे जगदीश, मुझे मेरे भाई बंधु कोई बचा नहीं सकते हैं। हमने सुना है कि आप दयालु हो, आप आर्थ के रक्षक हो, आप दीनानाथ हो, पतित पावन हो। मैं आज इस ग्रह रूपी पाश में फंस रहा हूं, आप जगदीश्वर जैसे भी रूप वाले हो मेरी रक्षा करो। मैं इस समय में बलवान इससे डर रहा हूं, जैसे बलवान काल से सब डरते हैं। यह कश्चन एसो बलिलोन्त कोरगात प्रचंड बेगा दविधावतो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपात यद भयात मृत्यु प्रधावत त्यरणम तमीमही। काल भी जिनके सामने डरता है, काल कोई कम थोड़ा ही है, बड़ा बलवान है। काल रूपी सर्प सबको ग्रस रहा है, बड़े प्रचंड वेग से सबको ग्रस रहा है। वो काल भी जिनके सामने डरता है, ऐसे परमात्मा के सामने मैं भयभीत होकर उनकी शरण स्वीकार करता हूं। हे जगदीश्वर, आप मेरी रक्षा करो। सुखदेव जी कहते हैं कि सामान्य हाथी नहीं था परीक्षित, इसने पूर्व जन्म में जो विद्या प्राप्त की थी उसके आधार पर उसने फिर भगवान से स्तुति करना प्रारंभ किया। अब ये गजेंद्र मोक्ष की स्तुति है, वो गजेंद्र मोक्ष का प्रकरण है। आप लोग इसको ध्यान से सुने और फिर इसकी महिमा को भी सुनना कि इसकी कितनी बड़ी विचित्र महिमा है। गजेंद्र कहने लगे कि हे महाराज, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, सारा संसार आपका रूप है, आप इसके आदि बीज हैं, फिर भी आप इससे परे हैं, आप में संसार है, आपसे बना हुआ है, आप इसमें निमित्त कारण है, और ये आप इससे परे भी हैं, और नहीं नहीं आप स्वयं इस संसार के रूप में ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपने अपनी माया से इस संसार को बनाया है। कभी तो ये प्रकट होता है सर के समय में प्रकट होता है और प्रलय के समय में ये छिप जाता है। सारे के सारे पंच महाभूत समय आने पर लीन हो जाते हैं, तब एक केवल अंधकार ही अंधकार रहता है। आपका कभी किसी में लीन लय नहीं होता, आप अपने स्वरूप में उसी प्रकार से विराजमान होते हैं। न देवता रहते हैं, न ऋषि रहते हैं, न ये जल रहता है, न थल रहता है, कोई नहीं रहते हैं। और जब आप इस संसार को बनाते हैं तो सब पैदा हो जाते हैं महाराज। जैसे कोई भी बेटा अपने जिस माँ से जन्म लिया है उस माँ के विवाह में शामिल नहीं हुआ, इसी प्रकार से आज तक कोई देवता ऐसा नहीं हुआ कि जो आपको स्वर्ग से पहले आप कैसे वैसा जान सके। कैसे जानेगा वो, क्योंकि वो तो बहुत बाद में पैदा हुआ है, आपको नहीं जान सकते हैं। आपको जानने की इच्छा रखने वाले लोग संत महापुरुष आसक्ति का त्याग करते हैं, फिर देखते हैं कि यह परमात्मा से खाली जगह सुई की नोक के बराबर भी नहीं है। आपकी व्यापकता वे समझ लेते हैं, न आपका जन्म है, न आपका कर्म है, न आपका नाम है, न आपका रूप है, आप अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। मन वाणी इंद्रिया इन सब से आप परे हैं, शांत भी आप हैं, घोर भी आप हैं, मूड भी आप हैं, बल भी आप हैं, निर्बलों का निर्बलत्व है वो भी आप हैं। सब इंद्रियों को प्रकाशित करने वाले हैं। असता छाये युक्ताये सदा भाषाये तेनमे, सदा प्रकाशमान आप है वो भी आप हैं। इस प्रकार से आप हैं और अखिल कारण आए, सारे के आप कारण हैं, लेकिन आपका कारण कोई नहीं है। निष्कारण आए और अद्भुत कारण आए, आप अद्भुत कारण हैं। देखो और कारण है, वो कारण कार्य के रूप में आते हैं तब अपनी शक्ल बदल देते हैं। बहुत से ऐसे कारण हैं, जैसे बीज है, बीज है उससे वृक्ष निकलता है तो बीज की शक्ल बदल जाती है और बीज नष्ट हो जाता है। मिट्टी में से भी हमने घड़ा बना लिया तो उतना जो मिट्टी का लौंदा पड़ा था उसमें से जितना हमने घड़ा बना लिया उस लौंदे में कमी आ गई। इसलिए घड़ा है वो मिट्टी का कार्य है, मिट्टी कारण है। घड़ा बनते ही उस कारण में किसी अंश में कमी आ जाती है, लेकिन आपसे कितने ही ब्रह्मांड बनते हैं और आप वैसे के वैसे रहते हैं, आप में कोई कमी नहीं आती, इसलिए आप अद्भुत कारण हैं। और गुण रूपी लकड़ियों के अंदर छिपे हुए चैतन्य रूप से आप उसमें आग के समान हैं। हमारे जैसे मूर्ख पशु भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो उनकी भी आप रक्षा करने वाले हैं। सब जगह आपका स्वरूप विराजमान है। जो घर गृहस्थ में आसक्त है, देह गेह में आसक्त है महाराज, उनको आप प्राप्त नहीं होते हैं। और यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजंत इष्टाम गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा तिशो रात्यपि देहम अव्ययम् करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम्। धर्म अर्थ और काम और मुक्ति, इनके लिए जो आपको चाहते हैं आप उनको सर्वस्व देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके शरणागत भक्त होते हैं वो कभी भी आपसे कोई धन नहीं मांगते, कोई भोग पदार्थ नहीं मांगते, वे केवल आप ही को मांगा करते हैं। क्यों चाहे दूसरी चीज? आनंद समुद्र मग्ना, वे आनंद के सागर में मग्न है, उनको दूसरे चीज की आवश्यकता ही नहीं है। परब्रह्म परमात्मा आप हैं, इंद्रियों से आप अतीत हैं। नाम रूप से तो केवल आपका एक थोड़ा सा बोध होता है, लेकिन चिंगारियां जैसे आग को प्रकाशित नहीं कर सकती, किरणें हैं जैसे सूर्य को नहीं बता सकती, ऐसे ही सारा संसार आपको कैसे बता सकता है? न तो आप देवता हैं, न मनुष्य हैं, न स्त्री हैं, न पुत्र हैं, आप इन सबसे अलग हैं। मैं महाराज आपसे एक चीज चाहता हूं, भागवत भर में जो बात नहीं आई है और ऐसा भक्त ने नहीं मांगा है वो मांग रहा है आज ये हाथी गजेंद्र, ध्यान से सुनना वो कितनी बड़ी बात कहता है कि जिजी विषे नाहमिया मुया किम अंतर बहिश्चा वृते भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विप्लवस तस्यात्म लोका वर्णस्य मोक्षम। महाराज मैं ज्यादा दिन इस हाथी की योनि में जीना नहीं चाहता हूं, और हाथी की योनि में जो मेरे कष्ट आया वो भी मैं नहीं चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि काल के द्वारा जिस अज्ञान का नाश नहीं होता है वो अज्ञान मेरा नष्ट होना चाहिए। ये समय है सबको नष्ट करता है, लेकिन समय पाकर अज्ञान नष्ट हो जाएगा ये बात नहीं है। यदि समय पाकर अज्ञान नष्ट होता तो अपने को यहां पर कथा सुनने की, सत्संग सुनने की, कल्याण के और उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं थी कि समय पर अपने आप ही अज्ञान नष्ट हो जाएगा, मुक्ति हो ही जाएगी। हमारे करने से क्या होगा, वो तो समय पर होगा। जैसे छोटा बालक है उसके साथ में कितना ही उद्योग करो वो एक दिन में जवान नहीं बनेगा, समय आने पर स्वतः बन जाएगा। यदि उसकी आयु बाकी है तो जवान हो ही जाएगा। ऐसे ही कोई समय आने पर हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए ये बात नहीं, कितने ही जन्म लग जाएंगे, कितने ही सर्ग लग जाएंगे, कितने ही कल्प लग जाएंगे तब भी अज्ञान नष्ट नहीं होता। तो महाराज समय पाकर और जितने भी जीव के कष्ट हैं वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन अज्ञान रूपी संकट नष्ट नहीं होगा। अतः आप मेरा अज्ञान दूर कर दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। बड़े बड़े योगियों ने अपने शरीर छिद्रों को अवरुद्ध करके आपको प्राप्त करने में बड़ी कठिनता का अनुभव किया है, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि केवल एक बार सच्चे हृदय से नमस्कार कर देने मात्र से आप द्रवित हो जाते हैं, आपके लिए इतनी कठिनता की बात ही नहीं है। ए प्रभु प्रपन्न पालाय, शरणागत की आप रक्षा करने वाले हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इससे ज्यादा महाराज मैं कुछ जानता भी नहीं हूं, आपका महात्म्य भी महाराज मैं जानता नहीं हूं। मैं आपके शरण में हूं, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। गजेंद्र ने यह बात कही, उस समय में ब्रह्मा आदि कोई नहीं आए। ब्रह्मा है, देवता है, उन्होंने तो यही कहा जो जगदीश्वर है। देखो यूं तो सब घमंड करेंगे, हम जगत के मालिक हैं, हम जगत के मालिक हैं, और जब मौका आता है तब भाई किसी का उद्धार कर दें, किसी पर कृपा कर दें, किसी का कल्याण कर दें, उस समय में देवता और ब्रह्मा सब पीछे खिसक जाते हैं, कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं। उस समय तो भाई त्रिलोकीनाथ भगवान है, जो वहां पर आराम से लेटे हुए थे, गजेंद्र की पुकार सुनी, लक्ष्मी जी के गोद में उनके चरण है, आराम से लेटे हुए थे, उनकी नींद टूट गई। लक्ष्मी जी ने पूछा, महाराज कहाँ जा रहे हो? उनको ये कहने में देरी लगेगी, मैं परिचय दूंगा तो देरी लगेगी, इतने में तो डूब जाएगा। वो बता रहे थे कि भाई मैं हाथी के वहां जा रहा हूं, तो हाँ तो बोले थे बैकुंठ में, थी बोलते बोलते तो हाथी के पास आ गए, और जो ही वो हाथी के पास आए, ब्रह्मा वगैरह सब घबराए कि अब भगवान हमारी खबर लेंगे, भगवान कहेंगे कि तुम कहां चले गए, तुमने क्यों नहीं सहायता की। तो ब्रह्मा जी तो हंस पर बैठ करके आए, देवता लोग अपने अपने वाहनों में बैठ कर, हाँ महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो, ऐसा करके भगवान की जय जयकार करने लगे। भगवान तो वहां किसी की जय जयकार सुने न कोई बात, सीधे वे गरुड़ से उतरे, और गरुड़ से उतर करके हाथी को पकड़ करके सूंड पकड़ के उसको बाहर लाए, और अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का सिर काट दिया। हाथी के सांस में सांस आया, तब भगवान को सांस में सांस आया कि अब मेरा काम पूरा हुआ। सो अंत सरस्य रुबले न गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्मति हरिंख उपात चक्रम। वो जब आकाश में देख रहा था हाथी के, ओहो हमारे प्राण रक्षक तो आ गए, अब इतना प्रसन्न हुआ, क्या बोले बेचारा, इतनी सी तो उसकी सूंड ऊपर थी, हे नारायण आपको नमस्कार है, इतना ही तो वो बोले थे, इतने में मुक्ति हो गई। तब देवता गंधर्व वगैरह सब भगवान के इस पराक्रम को, दयालुता को देख करके दुंदुभियां बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे, भगवान की जय जयकार करने लगे। महाराज आज तो आपने इस ग्राह का उद्धार करके बड़ा भारी बड़े बड़ी भारी दया दीन वत्सलता दिखाई है। देखो परीक्षित, अब देखो वो जो ग्राह था, जो ही भगवान के सुदर्शन चक्र का स्पर्श किया, तो देखते 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 ही वो तो दिव्य धाम में चला गया, मुक्त है देवल शापे ने, उसको तो कोई शाप लग गया था देवल ऋषि का। अब देखो ये दोनों को ही संतों का शाप लगा हुआ, हाथी को भी और ग्राह को भी। भाई संतों का अपराध कभी नहीं करना चाहिए, और संतों का अपराध तो फिर भाई संत और भगवान यही दूर कर सकते हैं। बात क्या हुई कि वो ग्राह था, वो पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था, वो एक बार तालाब के अंदर स्नान कर रहा था, वहां पर देवल ऋषि भी आए। अब ऋषि मुनि तो जानते हैं शरीर दुबला पतला होता ही है, वो बड़े कुरूप थे, दुबले पतले थे, वो गंधर्व था, नाचते कूदते वो बेचारे स्नान कर रहे थे, देवल उनका जाके पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ के उनको घसीटने लगा जल में, वो एकदम ध्यान से चूक गए, कहा कि कौन हो तुम? तो फिर वो ढीरता से हंसने लग गया, तो फिर कहा जाओ तुम ग्राह बनोगे, तुम संतों के साथ छेड़खानी करते हो, जाओ तुमको ग्राह बनेगा, जल के अंदर पड़े रहोगे। अब उसने माफी मांगी कि महाराज कहां तो मैं गंधर्व और कहां मैं तमोगुणी ग्राह बनूं, कोई मेरी मुक्ति का उपाय बताओ। बहुत गिड़गिड़ाए, संतों ने कृपा की, अच्छा तुम्हारे लिए स्वयं भगवान बैकुंठ से आएंगे और सुदर्शन चक्र से तुम्हारा उद्धार करेंगे। कि वाह महाराज बहुत बढ़िया बात, कृपा कर दी आपने। वो तो हो गया मगरमच्छ, और ये हाथी था, ये पहले पांड्य देश का इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था, इसने राज्य वगैरह सब छोड़ दिया, जंगल में चला गया मंदराचल पर्वत पर जाकर के, और वो तपस्या करने लगा। वो तपस्या करने लगा तो उधर से अगस्त्य ऋषि आए और मलयाचल पर्वत पर गया, और उधर से अगस्त्य ऋषि आए तो शिष्यों के साथ आए थे, तो वो खड़ा नहीं हुआ, उनका सम्मान नहीं किया। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे उठने बैठने का ही ज्ञान नहीं है, बिल्कुल जड़मती है, हाथी की तरह से तू जड़मती है, जा तू हाथी हो जा। उसने प्रार्थना की कि महाराज ध्यान नहीं रहा आपने, हाथी कोई बात नहीं, हाथी बनने पर भी नुकसान नहीं होगा, संतों की फटकार से भी नुकसान नहीं होता है, ओ संतों के लाड प्यार से तो नुकसान क्या होगा, संतों की फटकार से कभी किसी का बिगाड़ नहीं होता, न तो ग्राह का हुआ, अब न हाथी का गजेंद्र का हुआ। और उनको आशीर्वाद दे दिया अगस्त ने कि जाओ तुम्हारी जो इस समय में आराधना में जो विद्या है वो विद्या आगे भी सुरक्षित रहेगी और आगे काम आएगी, और तुम्हारे लिए भगवान स्वयं अवतार लेकर के आएंगे। हाथी बड़ा प्रसन्न हो गया। इस प्रकार से जब अगस्त ने साप दे दिया तो ये तो हाथी हो गया, और देवल ने साप दिया तो वो ग्राह हो गया। भगवान की कृपा से अब उसकी हाथी योनि भी दूर हो गई, और देखते 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 वो भगवान का पार्षद दिव्यादि दिव्य चतुर्भुज रूप वाला भगवान के पार्षदों के साथ में जाके बैठ गया गजेंद्र। सब बड़ा आश्चर्य करने लगे। इदम आ हरि प्रीत है। अब उसके बाद भगवान सबके बीच में कहने लगे, सुनो सुनो भाई, आज मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं, इसलिए मेरे दिल में कुछ बात है, वो बात आप लोगों को सुना देता हूं। अब ध्यान से सुनना। भगवान कहते हैं, देखो जो इस सरोवर को याद करेगा, इसके ऊपर जो इस पर्वत को याद करेगा, इसकी कंदराओं को याद करेगा, यहां के वृक्षों को याद करेगा, ब्रह्मा को याद करेगा, शिव को याद करेगा, क्षीर सागर को याद करेगा, श्वेत द्वीप को याद करेगा, सूर्य को याद करेगा, श्रीवत्स का चिन्ह मेरा है उसको याद करेगा, सुदर्शन को याद करेगा, कौमुदी की गदा है उसको याद करेगा, वनमाला को याद करेगा, मेरी शेष कला है उसका स्मरण करेगा, ब्रह्मा का स्मरण करेगा, नारद का स्मरण करेगा, प्रहलाद का स्मरण करेगा, मत्स्य कूर्म आदि मेरे अवतार हैं उनका स्मरण करेगा और प्रणव का स्मरण करेगा, धर्म की जो पत्नियां हैं दक्ष नंदिनी जितनी भी उनको याद करेगा, सोम कुमार ने चंद्रमा को याद करेगा, कश्यप जी को याद करेगा, गंगा है, सरस्वती है, नंदा है, कालिंदी है, इनको याद करेगा। तो भाई ये सब याद करने से पुण्य लोकांश मानवान उनको, उन लोगों को बड़े भारी पुण्य लोक की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह की बात नहीं है, सारे पापों से वो मुक्त होते हैं, इसमें संदेह की बात नहीं है। परंतु इस समय में इस गजेंद्र ने जो मेरी स्तुति की है, प्रातःकाल जगने के बाद और स्वस्थ होने के बाद जो व्यक्ति इस गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेगा, उस व्यक्ति को मरते समय में मेरी स्मृति मैं स्वयं उसको प्रदान करूंगा, ये इतना ऊंची महात्म्य की बात है। तेषां प्राणा तये चाहम ददामि विमलाम मतिम, उसको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी भगवान को याद करे, भगवान अपने आप उसको कहते रहे मेरे को याद कर ले, भगवान कहते मैं अपने आप उसको अपनी विमल मति दूंगा उसको। इतने प्रसन्न हुए भगवान, जोर से वहां पर शंख बजाए, देखो प्राय करके देवता बजाते हैं, यहां भगवान बजाए, जोर से शंख बजाए, सबको हर्षित करते हुए गरुड़ पर विराजमान होकर के वे चले गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो सुना ना, ये भगवान का कैसा विचित्र चरित्र है, कर्माघनाशनम, आओ कोई कितना से कितना ही बड़ा पापी भगवान के सामने कोई ठहर सकता है? कोई भी पाप भगवान के सामने नहीं ठहर सकता है। अब हम आपको और कथा सुनाते हैं। पांचवा जो मनु हुआ वो रैवत मनु हुआ, वहां पर भगवान ने वैकुंठ रूप से अवतार लिया था, विकुंठा के यहां शुभ्र की पत्नी थी विकुंठा, उसके यहां भगवान ने वैकुंठ रूप से अवतार लिया, अवतार लेकर भगवान वैकुंठनाथ कहलाते हैं, वैकुंठ में जाकर रहते हैं, वे वहां की लीला है। और वहां की लीला तो भाई हमने आपको बता दी है कि कैसे कैसे जय विजय को साप मिला है और किस प्रकार से वे रहते हैं, हमने आपको पहले बता दी है। छठा मनवंतर है, उसमें छठे मनवंतर में चाक्षुष मनु राज्य करते हैं और उस समय में अजित नाम से भगवान अवतार लेते हैं। ये इस अवतार में उन्होंने ऐसा विचित्र कार्य किया है कि जिसका वर्णन हम क्या बतावें। देखो समुद्र का मंथन किया, देवताओं को उन्होंने अमृत पिलाया और मंदराचल पर्वत था उसको उन्होंने कूर्म रूप से कछुआ बनकर के अपने पे धारण किया, ये सब काम अजित भगवान ने किया, जो अजित भगवान संभूति के यहाँ बैराज के यहाँ जन्म लिए हैं, संभूति और बैराज के यहाँ भगवान अवतार लेकर के संसार के अमृत प्रदान करने में बहुत बड़ा काम किए, बहुत बड़ी विचित्र लीला की है, ये अजित भगवान का बड़ा विचित्र पराक्रम है। राजा कहने लगे, महाराज थोड़ा थोड़ा लोभ दे दे करके क्यों बताते हो, थोड़ा विस्तार से सुना दो, ये क्षीर सागर है और अमृत की कथा है, भगवान ने अमृत निकालने में कोई कंजूसी नहीं रखी, तो आप लीला कहने में क्यों कंजूसी रखते हो, आप इस लीला को जरा विस्तार के साथ सुनाओ। यथा अमृतम सुरई प्राप्तम, देवताओं को कैसे अमृत मिला ये हमको सुनाओ। महाराज आप चिंता मत करना, हमको कोई भूख प्यास नहीं लगी है, हम तो बहुत दिनों से संसार से तपे हुए हैं, संसार के ताप से तपे हुए हैं, इसलिए आपकी कथा की जो ये वर्षा हो रही है अमृत के समान, जो मीठी मीठी कथा है हमको बहुत अच्छी लगती है, अतएव आप इस कथा को विस्तार के साथ सुनाओ। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के प्रश्न को सुनकर के समुद्र मंथन की कथा है। जी के पावन तट पर समस्त ऋषि मुनियों के बीच में सुखदेव जी महाराज, महाराज परीक्षित के पूछने पर अब समुद्र मंथन की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। राजा परीक्षित के मन में ये बात, ये जिज्ञासा है कि देवताओं ने अमृत पी लिया, उसके बाद और क्या क्या भगवान की लीला हुई। आप परीक्षित जी के प्रश्न को बड़ी गहराई से सुनेंगे, सुखदेव जी महाराज भी बड़ी गहराई से उसका उत्तर देते हैं। आप देखो, अमृत पीने के बाद क्या होता, देवताओं ने अमृत पी लिया, अमृत पीने तक की ही कथा थी, परंतु पूछा है किंच अन्यद अभवत ततः, अमृत पी लेने के बाद और क्या हुआ, इसका मतलब एक विशेष कार्य और हुआ था, वो विशेष कार्य भी, विशेष लीला भी भगवान की इसी के अंतर्गत आएगी। सूत जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित के पूछने के बाद सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न होकर के अब भगवान के पराक्रम से भरी हुई आगे की लीला बता रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं कि देखो राजन, जब देवता लोग असुरों से हार गए, उनके हाथ से स्वर्ग निकल गया, तो देवता लोग बड़े दुखी हो गए। देवताओं के हारने के कई कारणों में एक यह कारण भी था कि एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान वैकुंठ के दर्शन करके आ रहे थे, तो रास्ते में हाथी पर बैठे हुए इंद्र मिले। इंद्र ने ऋषि को प्रणाम किया, ऋषि दुर्वासा बड़े प्रसन्न हो गए और कहो ये हमारी माला है, ये माला तुम ले लो। इंद्र ने वो माला ली और माला लेकर के हाथी के गले में डाल दी, और हाथी अब क्या जाने माला को, हाथी ने उसी समय में उसको मसल करके फेंक दिया। तो दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आया। दुर्वासा ने कहा कि अरे, एक ऋषि का प्रसाद था और वो भी मैं वैकुंठ से लेकर आया था, ये प्रसाद तो तुम अपने पास रखते, तुमने हाथी को दे दिया और हाथी ने हमारे देखते देखते इसका अपमान कर दिया, जाओ तुम्हारे हाथ से राजलक्ष्मी छीन ली जाएगी। अब बेचारे सारे के सारे देवता लोग विचार में पड़ गए, क्या करें। पहले तो स्वयं मंत्र ही अपने आप विचार किया, कोई उनको ज्ञान नहीं हुआ। तब सुमेरु पर्वत के ऊपर ही ऊपर जो ब्रह्मा जी का स्थान है वहां पर वे गए, ब्रह्मा जी को सब बात बताई। ब्रह्मा जी ने उस समय में अपने मन ही मन में भगवान का स्मरण किया। उस समय में वे कहने लगे कि हे देवताओं, आप हमारी बात सुनो, मैं हूं शंकर है, तुम लोग हो, जितने असुर हैं, मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, ये सब के सब एक उस भगवान के अंश हैं, भगवान की शरण में जाना चाहिए। उनका न तो कोई द्वेष का पात्र है, न उनका कोई राग का पात्र है, फिर भी इतनी बात जरूर है कि भगवान को संसार चलाना है, तो वे संसार में जो गुणवती शक्तियां हैं, संचालन शक्तियां हैं, उनका वे विस्तार करती हैं। तो जगत गुरु भगवान के अलावा हमारा और कौन प्रिय कर सकता है। इस प्रकार से सब देवताओं को साथ लिए, शंकर जी को साथ में लिए, ब्रह्मा जी अजित के धाम में पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान को देखा नहीं, तो देखो लोग कहते हैं हम भगवान को देखे नहीं तो क्यों माने और कैसे माने। भागवतकार कहते हैं कि देवता ब्रह्मा भी अजित के धाम में गए, तत्र अदृष्ट रूपाये, वहां भगवान का स्वरूप देखा नहीं लेकिन श्रुत पूर्वाये, भगवान के विषय में सुन ही रखा था, तो स्तुतिम अब्रूत, अब वे भगवान की स्तुति करने लग गए। तो जो भगवान के स्वरूप को देखे हुए नहीं है, केवल संतों से, शास्त्रों से, कथाओं में सुने हुए हैं, उनको ये विश्वास रखना चाहिए कि भगवान है, अतः उस विश्वास के साथ में स्तुति करनी चाहिए। उस स्तुति के बल से क्या होता है कि फिर भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे देववर, आपका निर्विकार स्वरूप है, आपका रूप कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता, आपके स्वरूप का कोई अंत नहीं, कोई आदि नहीं, सबके आदि में आप हैं, सब प्राणियों के हृदय में रहने वाले हैं, वाणी से आपका निरूपण किया नहीं जा सकता है और मन से भी तेज आपकी गति है, आप प्राण को, मन को, बुद्धि को, सारी चेष्टाओं को, इंद्रियों को, सब को जानते हैं। जीव के अंदर विद्या और अविद्या दोनों बात रहती है, लेकिन आप में ये दोनों नहीं है, विद्या और अविद्या यूं नहीं है, आप तो ज्ञान रूप है। ये मन रूपी एक चक्र है जो चलता रहता है, आपकी माया का पार कोई जीव नहीं पा सका है, सारे गुणों को आपने जीत रखा है। आपके हम लोग सात्विक शरीर है, देवता ब्रह्मा आदि भगवान के सात्विक शरीर माने जाते हैं, तो देवता वगैरह ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हम आपके सात्विक शरीर हैं। बड़े बड़े ऋषि भी आपके सूक्ष्म रूप को नहीं जान सकते, तो हम लोग तो जान ही कैसे सकते हैं। कितना विचित्र आपका विराट रूप है, ये पृथ्वी आपका चरण है, जहां पर स्वेदज, अंडज, जरायुज और उद्भिज चार प्रकार के प्राणी रहते हैं। ये जल है वो आपकी शक्ति है जिससे सब लोग बिचारे जीवन जी रहे हैं। चंद्रमा आपका मन है, अग्नि आपका मुख है जिसमें कितना ही कर्म कांड हो रहा है, और चक्षु और सूर्य आपका नेत्र है, ये प्राण है जीवों के प्राण, वो वायु है, ये प्राण है सब जीवों का, सब उससे जी रहे हैं। आप मुक्ति के दरवाजे हैं, अमृत के परम अधिष्ठान है, और मृत्यु भी आप इसे पैदा होती है। दिशाओं से दिशाएं आपके कान है, आपके भुजाओं से इंद्र आदि देवता पैदा हुए हैं, आपके क्रोध से शंकर पैदा हुए हैं, आपकी बुद्धि से मैं पैदा हुआ हूं, ब्रह्मा पैदा हुआ हूं। इसलिए हे महाविभूति आप प्रसन्न हो जाइए। आपके वक्षस्थल से लक्ष्मी प्रकट हुई, आपके छाया से पितर पैदा हुए, आपके स्तनों से धर्म निकला, आपके पीठ से अधर्म निकला, आपके सिर से ऊंचे के लोग मिले हैं, ब्राह्मण आपका मुख है, क्षत्रिय आपकी भुजा है, वैश्य आपका उदर है, शूद्र आपका चरण है, ऊपर का होठ है वो लोभ और वो प्रीति है, नीचे का होठ है वो लोभ है। ये यमराज जी कौन है? आपकी भौवें ही यमराज जी है। जितना जो कुछ यहाँ पदार्थ मिलता है वो आपसे अतिरिक्त नहीं है। प्रभुदाप पादम कहते हैं, बड़े बड़े लोगों ने सबका निषेध करके आप ही की सत्ता को स्वीकार किया है। आप अपने आनंद में मग्न रहने वाले हैं और माया के गुणों में आपकी दृष्टि लेश मात्र भी आसक्त नहीं होती है, ऐसा आपका दिव्य रूप है। हे दयालु, आप अपने स्वरूप को हमारे सामने प्रकट कीजिए, मुस्कुराता हुआ आपका चेहरा हमारे सामने दिखाइए। कितने कितने अवतारों से जनता का आप कल्याण किए हैं, लोगों के पापों को आपने कैसे धो डाला है पता ही नहीं चलता। ये लोग बड़े आश्चर्य की बात है, क्लेश भूरिणी अल्पसारिणी, क्लेश भूरि अल्पसारिणी, क्लेश भूरि अल्पसाराणी कर्माणी विफलानि वा देहिनाम विषयार्थानाम न तथैवार्पितम त्वयि। कितना क्लेश उठा उठा करके लोग काम करते हैं, उसके बदले में मिलता है उनको बहुत थोड़ी चीज मिलती है, और उनके काम कई बार विफल भी हो जाते हैं, परंतु वही काम यदि आपको अर्पित कर दिए जाए तो उनमें कोई विफल होने का प्रश्न ही नहीं है। वृक्ष की जड़ में जल देने से सारा वृक्ष हरा भरा होता है, एक आपकी आराधना करने से सारे प्राणियों में बल आता है, सारे प्राणियों की सेवा हो जाती है। हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। ऐसी जब वो ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे देवताओं के साथ में, तो देखते देखते ही हजारों हजारों सूर्यों की कांति से भी विलक्षण कांति वाले भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। जो ही भगवान उनके सामने प्रकट हुए, उस समय देवताओं की आंखें चंदिया गई, वे देख नहीं सके भगवान को, आकाश में उनकी दृष्टि गई नहीं, इधर उधर वे आंख को फेरने लग गए, पलके वे डालने लग गए। ब्रह्मा जी थे और शंकर जी थे, दो ही ऐसे थे जिन्होंने भगवान का पूर्ण स्वरूप देखा। परीक्षित, तुम भी ध्यान करो कितना दिव्य वो रूप था, स्वच्छ मरकत मणि के समान वे श्याम है। देखो भगवान कभी घन के समान श्याम वाले हैं, कभी आकाश के समान नीलवर्ण वाले हैं, और कभी मरकत मणि के समान श्याम वर्ण वाले हैं। ऐसे भगवान की श्याम मूर्ति बड़ी दिव्य है, उस श्यामता में एक विशेष चमक है, और कमल के समान भगवान के नेत्र खिले हुए हैं, तपे हुए सोने से उनके गहने बने हुए हैं, और पीला पीला उन्होंने वस्त्र पहन रखा है। भगवान की मुखाकृति बहुत सुंदर है, किरीट कुंडल देदीप्यमान हो रहे हैं, उनके केयूरों में, केयूर माने भुजबंद, उनके अंदर बड़े अच्छे अच्छे मणियां लटकी हुई है, केयूर माने कानों के कुंडल वगैरह, और दूसरे आभूषण ये सब महामणियों से जटित हैं। इस प्रकार से कर्णाभरण निर्भ्रात कपोल श्री मुखाम्बुजम, कानों के आभूषणों से भगवान के कपोल है वो एकदम चमकीले हो रहे हैं। कौस्तुभ मणि को धारण किए हुए भगवान सुदर्शन आदि समस्त पार्षदों के साथ में वहां उपस्थित हुए हैं। उस समय में देवताओं ने भगवान की शोभा को देखा, सब देवता बड़े प्रसन्न हो गए। फिर ब्रह्मा जी कहने लगे, आह हमारा जीवन सफल हो गया महाराज, कितना पवित्र आपका दर्शन हुआ है। अजात जन्म स्थित संयमाया गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय, संसार की जन्म स्थिति और प्रलय होते हैं, आप जन्म स्थिति प्रलय से रहित है, निर्गुण है, छोटे से छोटे आप है, बड़े से बड़े आप है, आपका ये स्वरूप पूजनीय है। वेदों में तंत्रों में लोगों ने आपके स्वरूप की बड़ी महिमा गाई है। हे विश्वमूर्ति, आपके अंदर सारा संसार समाया हुआ है, संसार में आगे भी आप थे, बीच में भी आप हैं, अंत में भी आप रहेंगे। घड़े के आदि में मिट्टी है, बीच में भी मिट्टी है, घड़ा फूटेगा तब भी मिट्टी है, ऐसे आप हैं। आपने माया के द्वारा संसार को बनाकर उसमें प्रवेश किया है, बड़े बड़े मनीषी लोग आपको अपने में वैसे ही प्राप्त कर लेते हैं जैसे काठ में से आग और दूध में से दही प्राप्त किया करते हैं। हे प्रभु, बड़ी कृपा की आपने हमको दर्शन दिया है, कितना दिव्य आपका रूप है, आपके दर्शनों से हमारी सारी अशांति दूर हो गई है। कृपा करो नाथ, हम जिसके लिए आए हैं वो काम भी आप पूरा कर दीजिए। मैं देवता शंकर आदि सब आपकी शरण में आए हैं, पृथक भाव पृथक विभाता, और हम सब अलग अलग हुए लोग, इस संसार का अभिमान करने वाले लोग किसी भी प्रकार से संसार को बना नहीं सकते, वे हम आपको कैसे जान सकते हैं, आप हमको शांति प्रदान कीजिए और हमारा कल्याण कीजिए। ब्रह्मा जी की ये बात सुनी तो मेघ के समान गंभीर वाणी में भगवान अजित ने उन सब को सुनाते हुए कहा कि हे ब्रह्मा जी, हे शंकर जी और हे देवताओं, मेरी बात सुनो। देखो यहां भगवान बहुत चालाकी की बात कहेंगे। भगवान ये बताना चाहते हैं कि हे असुरों, तुम जितनी चालाकी जानते हो उससे ज्यादा चालाकियां मेरे पास हैं, तुम जितनी अकल लगाओगे उससे ज्यादा अकल मेरे पास है, मेरे पास कोई अकल की कमी नहीं, मेरे पास कोई सोचने की कमी नहीं, अटकलों की कमी नहीं, इसलिए सीधे साधे होकर मेरे सामने रहना चाहिए। अब ये बात समझाने के लिए भगवान यहाँ एक विचित्र बात कहते हैं। लोग कहेंगे कि देखो भगवान ने ये बात कही, तो ये बात किन के लिए कही है, देवताओं को कही है और असुरों के प्रति कही है। क्यों कही है? कि असुर समझते हैं कि हम जितनी नीतियां जानते हैं, हम जितने कपट जानते हैं, हम जितना अपना स्वार्थ जानते हैं, उतना कोई दूसरा नहीं जानता। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि ये सब चीजें हमारे पास तुमसे ज्यादा है। भगवान कह रहे हैं कि देखो, आप लोग इस समय में देवताओं से जाकर संधि कर लो। कभी कभी ऐसा होता है, समय देख करके अपने कमजोरी जान करके बलवानों से संधि कर लेनी चाहिए, और उस संधि में यदि हमको ज्यादा लाभ होता हो और नुकसान बहुत थोड़ा होता हो तो थोड़ा नुकसान सह लो ज्यादा लाभ के पीछे। परंतु याद रखना, सांप और चूहे जैसी मित्रता होनी चाहिए आपकी। इस प्रकार से जाकर के आप मित्रता का तो स्वांग बनाओ और अपने स्वार्थ में सावधान रहो। सांप और चूहे की क्या मित्रता थी? कहते हैं एक सपेरा था, उसकी झोली में, उसकी छबड़ी में एक सांप था। एक चूहे ने देखा कि इसमें ये काली काली चिकनी चिकनी है, इसमें शायद कोई खाने की चीज होगी, तो फुदकता फुदकता चूहा था वो झोली में चला गया। झोली में जाकर जब वो छबड़ी को यूं कुदेरने लगा और छबड़ी के ऊपर के ढक्को हटाया और उसमें गया तो उसको सांप दिखाई दिया। सांप ने देखा कि चूहा आ गया, तो सांप चाहता तो चूहे को खा सकता था, परंतु उसने चूहे को खाया नहीं। अभी उसने देखा कि इस चूहे से मुझे बड़ा मतलब सिद्ध करना है। तो कह रहे, चूहा, तुम और हम तो भाई भाई हैं, तू भी बिलों में रहता है और हम भी बिलों में रहते हैं। अब देख, इस मदारी के यहां, इस सपेरे के यहां तुम भी आ गए और मैं भी आ गया, ये अपना घर थोड़ा ही है, चलो अपने घर चलते हैं। चूहे ने कहा कि भाई, तुम तो हमको खाने वाले हो। अरे, खाने वाले थे तब खाते थे, अभी तो हम तुमको खाएंगे नहीं। तुम भी मुक्त हो जाओ और हमें भी मुक्ति दिला दो। देखो, तुम्हारे दांत बहुत तीखे हैं, छबड़ी में छेद कर दो और कपड़े में छेद कर दो, तुम भी निकल जाओ। उसमें गया तो उसको सांप दिखाई दिया। सांप ने देखा कि चूहा आ गया, तो सांप चाहता तो चूहे को खा सकता था, परंतु उसने चूहे को खाया नहीं। अभी उसने देखा कि इस चूहे से मुझे बड़ा मतलब सिद्ध करना है। तो कह रहे, चूहा, तुम और हम तो भाई भाई हैं, तू भी बिलों में रहता है और हम भी बिलों में रहते हैं। अब देख, इस मदारी के यहां, इस सपेरे के यहां तुम भी आ गए और मैं भी आ गया, ये अपना घर थोड़ा ही है, चलो अपने घर चलते हैं। चूहे ने कहा कि भाई, तुम तो हमको खाने वाले हो। अरे, खाने वाले थे तब खाते थे, अभी तो हम तुमको खाएंगे नहीं। तुम भी मुक्त हो जाओ और हमें भी मुक्ति दिला दो। देखो, तुम्हारे दांत बहुत तीखे हैं, छबड़ी में छेद कर दो और कपड़े में छेद कर दो, तुम भी निकल जाओ और हम भी निकल जाए। कि अच्छी बात है। अब वो चूहे ने गोल गोल एक छेद कर दिया छबड़ी में और कपड़े में। अब वो आगे चूहा निकलने लगा और पीछे सांप आया, चूहे को पकड़ करके खा गया और वहां से चुपचाप निकल गया। ऐसे ही तुम लोग देवतियों के पास जाओ और हम कहें वो काम करो। तुम समुद्र का मंथन करके उसमें से अमृत को निकालो। अमृत को निकाल लोगे और फिर तुम अमृत को पी लोगे तो सदा के लिए तुम अमर हो जाओगे। रोज रोज की तुम्हारी लड़ाई मिट जाएगी। तुम आते हो, वो तुमको पीटते हैं, तुम हमारे पास आ जाते हो। हमारे पास आते हो तो फिर हमें तुम्हारे लिए कई तरह तरह के उपाय करने पड़ते हैं। तो तुम समुद्र का मंथन करो। उसमें क्या करो कि पृथ्वी के ऊपर जितने तृण है, जितनी लताएं हैं, जितनी औषधियां हैं, इन सब को ले जाकर समुद्र में तुम डाल दो और मंदराचल पर्वत है उसकी मथानी कर दो और वासुकी नाग है उसकी नेती बना लो, उसकी डोरी बना लो, और फिर तुम आपस में मंथन करो उस समुद्र का। बड़ा अच्छा अमृत मिलेगा। देखो, हम आपको सही सही बात बता देते हैं कि परिणाम में देवतियों को कुछ नहीं मिलेगा और आपको अमृत मिल जाएगा। परंतु एक बात है, इसके लिए लोभ का त्याग करना पड़ेगा। समुद्र में बहुत सी चीजें निकलेंगी, उसमें से आप लोग लोभ मत करना। अच्छी अच्छी चीजें निकले तो ये भी हम ले ले, ये भी हम ले ले। तुम्हारी दृष्टि केवल अमृत पर रहनी चाहिए। अमृत के अलावा जो चीज मिले, दैत्य लोग मांगे तो खुले हाथ दे देना। उसमें से जहर भी निकलेगा, जहर से तुम डरना नहीं और अच्छी वस्तुओं में लोभ करना नहीं। अमृत को तुम लेकर के सदा के लिए शक्तिवान होकर असुरों पर विजय प्राप्त कर लो। भगवान इतना कह करके अदृश्य हो गए। अब पिता मैंने उनको नमस्कार किया, देवताओं को साथ में लिया और वे अपने अपने धाम में चले गए और देवताओं को कहा कि अब भाई राजा बलि के पास तुम ही जाओ। उस समय में बलि का शासन था। कहते हैं बलि के पास में इंद्र गए, अपने हाथ में कोई शस्त्र नहीं है। उस समय में जब वे गए तो बलि के यहां बड़े बड़े पहरेदार थे दैत्य लोग। उन्होंने कहा कि अरे अरे देवता आ रहे हैं, देवता आ रहे हैं, मारो इनको, मारो, भगाओ यहां से, ये हमारे शासन को लूटने के लिए आ रहे हैं। देवताओं ने कहा देखो भाई हम बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, हमारे हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, हम खाली हाथ आ रहे हैं, असंयतता। तो कहते हैं कि अच्छी बात है। बलि ने कहा कि देखो भाई जो संधि के लिए हमारे पास आते हो उनको रोकना नहीं चाहिए, राजा का ये कर्तव्य है कि वे संधि किसी के साथ भी करें। अब एक तरफ देवता बैठ गए, एक तरफ दैत्य बैठ गए। देवताओं में मुख्य है इंद्र और दैत्यों में मुख्य है बलि। अब आपस में बातचीत करने लगे। इंद्र ने कहा देखो जी आप और हम सभी एक ही पिता के संतान हैं और इस दुनिया के सामने हम लोग लड़ते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। बलि ने कहा बात बिल्कुल ठीक है, तो ये रोज रोज की लड़ाई बंद हो जाए इसके लिए क्या करो कि आप हम दोनों एक हो जाओ, चाहे तुम राजा रहो और चाहे हम राजा रहे, इस बात की तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए, बस ये है कि तुम और हम दोनों एक होने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अब क्या करना है कि आप ऐसा करो आप और हम दोनों एक होकर के समुद्र का मंथन करें, मंदराचल पर्वत को लेवे और वहां उसके मथानी बना करके और उसका डोरी बना, वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र का मंथन करें, अमृत निकले, अपने सब अमृत पिए और अमृत पी करके अपने इतनी उसमें शक्ति होगी कि अपने को कोई नहीं हरा सकता। एक तो और आपकी और हमारी एकता हो जाएगी, उस एकता में अमृत भरा पड़ा है और एक फिर समुद्र में से अमृत निकलेगा, उसका हमको बल मिलेगा, तो हम लोग सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। दैत्य लोग सब बड़े प्रसन्न हो गए कि इंद्र तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो गई, भाई तुमने बड़ी अच्छी बात बताई, तो आप अच्छी अच्छी औषधियां हैं, लताएं हैं, वृक्ष हैं, लाला करके समुद्र में ले जाकर के डालने लगे और मंदराचल पर्वत है उसके पास में गए, उसको जाकर के खूब हिलाया, बड़ी मुश्किल से तो वो हिला हिल करके, और जब वो ढीला हो गया तब अब को उखाड़ने लगे। अब उखाड़ने लगे, उखाड़ने बड़ा देवताओं को और असुरों को इसमें बल लगाना पड़ा। ऐसा करते करते उसको उखाड़ तो लिया लेकिन अब ले चलना बड़ा मुश्किल हो गया। अब उसको जैसे तैसे उत्पाट्य उखाड़ लिया, ले चलने लगे तो वो कई बार तो हाथ से छूट गया, कई बार उठाया, कई बार छूट गया। इसमें कई तो देवता और कई दैत्य धाम से धार गए। मन ही मन में देवताओं ने भगवान को याद किया, भगवान को याद किया तो भगवान उसी समय में गरुड़ पर विराजमान होकर वहां आ गए। भगवान ने आते ही कहा कि अरे भाई आज ये पूर्णिमा और अमावस्या दोनों एक ही दिन में कैसी इकट्ठी हो गई, देवताओं में और असुरों में दैत्यों में इतना प्रेम कैसे पैदा हो गया। तो दैत्यों ने कहा कि महाराज हमारी बुद्धि सुधर गई, हम एक हो गए हैं, बड़ी बड़ी अच्छी बात है भाई, तुम्हारा भाइयों का प्रेम देख करके तो मेरा दिल भी खुश हो गया है, कोई बात बताओ, कोई सेवा बताओ, कोई काम बताओ। तो आप आगे वो काम ये है कि महाराज ये मंदराचल पर्वत है, इसको हम समुद्र के किनारे ले जाना चाहते हैं। क्यों भाई? कि वहां हम अमृत निकालेंगे। अच्छी बात है, फिर क्या करोगे? अमृत पी लेंगे महाराज, फिर अमर हो जाएंगे। तो मंदराचल पर्वत हमसे चलता नहीं है, आप इस मंदराचल पर्वत को ले जाने में सहायता कीजिए। भगवान ने कहा अच्छी बात है, आप सब लोग हट जाओ, या तो आप उठा लो, आपसे नहीं उठता है तो आप देखो हम उठावे, हाथ मत लगाना, नहीं तो आप घमंड करोगे कि हम ले आए, इसलिए आप अलग हो जाओ। सबने कहा महाराज हमारा घमंड तो चूर हो गया। अब उसके बाद उन्होंने मंदराचल पर्वत को भगवान ने उठाया, उठा करके गरुड़ के पीठ के ऊपर रख दिया कि चलो समुद्र में, तुम भी समुद्र के पास चलते हैं हम भी। अब जितने देवता और जितने असुर उसके नीचे मरे थे, भगवान ने एक ऐसी अमृत भरी दृष्टि से यूं देखा कि जितने देवता थे वो तो जीवित हो गए और असुर थे वो वहीं पर पसरे के पसरे रह गए। किसी को पता ही नहीं चला कि भगवान की क्या लीला है। नीचे दबे हुए लोग कहने लगे देवता, अरे भाई हम तो बेहोश हो गए, तो हमको तो होश आ गया। होश क्या आ गया, तुमको तो भगवान ने जला दिया। लेकिन इस बात को वो जानते ही नहीं थे। अब आ गए वे समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे आए तो मदराचल पर्वत को रख दिया जल के अंदर, और फिर चारों तरफ वासुकी नाग थे उसको लपेट दिया, लपेट करके। और भगवान ने देवताओं से कहा कि देवताओं से कहा तुम तो भाई मुंह पकड़ लो, और असुरों से कहा तुम इसकी पूंछ पकड़ लो। भगवान जानते थे कि हम करेंगे उसमें ये उल्टा देखेंगे असुर, इसलिए भगवान ने देवताओं से कहा कि तुम तो मुंह पकड़ो, और असुरों से कहा कि तुम पूंछ पकड़ो। तब असुरों ने कहा क्यों जी, आप तो हम दोनों को बराबर देखने वाले हो, हमको पूंछ क्यों पकड़ाते हो, हमको मुंह पकड़ाओ इसका, क्योंकि ये पूंछ तो बहुत अमंगलकारी होती है, हम कोई छोटे बाप के तो है नहीं जो पीछे रहेंगे, एक ही बाप के बेटा हम, छोटे नहीं, हम तो इसका मुंह पकड़ेंगे। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है, हमसे गलती हो गई, देवताओं तुम पूंछ पकड़ो और तुम इसका मुंह पकड़ो। अब इतने में देवता लोग समझ गए सांप का मुंह पकड़ने में ज्यादा फायदा है कि पूंछ पकड़ने में फायदा है। भगवान ने देख रहा है ये तो अमृत के अधिकारी, तो प्रारंभ में श्री गणेश में ही जहर का पक्ष ले रहे हैं, इनको अमृत कहां मिलेगा, तो मुंह पकड़ लो इसका। हरि पुरुषता जगरी है पूर्वम देवास्ततो भवन। तब देवताओं ने पूंछ पकड़ ली, पहले पहले भगवान ने पकड़ी, भगवान के पकड़ने से फिर देवताओं ने भी पूंछ पकड़ ली, पूंछ पकड़ ली। अब वहां पर वो मंथन करने लगे, अब मंथन करें तो वो पर्वत था वो तो जल के अंदर डूबने लगा, पहले आधा गया फिर चौथाया गया फिर और नीचे गया फिर और नीचे गया। अब यूं थोड़े ही मंथन होता है, वो तो बीच में रहता है तब मंथन होता है। भगवान ने देखा कि किरा किराया सब गड़बड़ हो गया, तब फिर भगवान उस जल के अंदर गया। अब एक अजित रूप से तो भगवान वहां खड़े हैं, और भगवान अपने एक दूसरे रूप से कच्छप रूप से जल के अंदर गए, और 1,00,000 योजन माने 4,00,000 कोस वाली अपनी पीठ बना करके वहां पर फैल गए। अब ऊपर से मंदराचल पर्वत आ रहा है, और नीचे से भगवान ने अपने कठोर पीठ से उसको ऊंचा कर दिया है, ऊंचा कर दिया। तब वो ऊंचा ही होता चला गया, भगवान जान लगे अच्छा ये विघ्नेश है, वो हमारे काम में विघ्न डालता है, देखते हैं कितना विघ्न डालता है। देखो हमारे जीवन में कभी कोई विघ्न आता है तो लोग देखते हैं कि ये हो गया वो हो गया, भगवान के कार्य में भी विघ्न आते हैं, लेकिन भगवान के तो यहां विघ्न करे क्या। ऐसे ही जो भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं, विघ्नों से घबराना नहीं चाहिए, भगवान के ऊपर ही भरोसा रखना चाहिए।